Krishna, ರಾಮ ರಾಮ ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ ಹರೆ ಅರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ಲಾಭರೂಪಾದ ಕೀ ಜಯ ಸಮಾವೇತ ಭಕ್ತವೃಂದ ಕೀ ಜಯ ಗ್ರಂಥರಾಜ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕೀ ಜಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ಸತೋ ಜಯಂ ಮುದೀರಯೇ ನಷ್ಟ ಪ್ರಾಯೇಶ ಭದ್ರೇಶು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी। आज हम दसवें खंड से पहला चैप्टर से आठवां श्लोक पढ़ेंगे। रोहिण्या स्तनया प्रोक्ता रोहिण्या स्तनया प्रोक्तो रामा संकर्षण स्तव्या रामा संकर्षण स्तव्या देवक्या गर्भ संबंध देवक्या गर्भ संबंध तो देहांतरम विना कुतो देहांतरम विना रोहिण्या सन्या प्रोक्तो रामा संकर्षण स्तव्या देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम विना रोहिण्या सन्या प्रोक्तो रामा संकर्षण स्तव्या देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम विना
रोहिण्यास्तनया प्रोक्तो रामा संकर्षणस्तव्या देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम विना रोहिण्यास्तनया प्रोक्तो राम संकर्षणस्तव्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम विना राम संकर्षणस्तव्या देवक्या गर्भ संबंध सुतो देहांतरम रोहिण्या स्तनया प्रोक्तो राम संकर्षणस्तव्या देवक्या गर्भ संबंध सुतो देहा
माता जी
रोहिण्या स्तनया प्रोक्तो राम संकर्षणस्तव्या देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम विना
बलदेव की माता रोहिणी देवी
तनया
पुत्र
प्रोक्त
राम
बलराम संकर्षण
संकर्षण
और कोई नहीं
बलराम है
जो चतुर्भ्यु
जो चतुर्भ्यु
संकर्षण
अनिरुद्ध प्रद्युम्न तथा
वासुदेव आपके द्वारा
आपके द्वारा
ऐसे कहा जाता है
ऐसे कहा जाता है
देवक्या
कृष्ण की माता
देवकी का
गर्भ संबंध
गर्भ
संबंधी
कुतः
कैसे
देहांतरम दैवों के स्थानांतरण के
बिना
जय सुखदेव गोस्वामी आप पहले ही बता चुके हो कि द्वितीय चतुर्भुज संबंधित संकर्षण रोहिणी के पुत्र बलराम के रूप में प्रकट हुए यदि बलराम को एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित न किया गया होता तो ये कैसे संभव हो पाता कि ये पहले देवकी के गर्भ में रहते और बाद में रोहिणी के गर्भ में कृपया मुझसे इसकी व्याख्या कीजिए। यहाँ पर एक प्रश्न उठाया गया है जो विशेषतया साक्षात संकर्ष विशेषतया साक्षात संकर्ष बलराम को समझने की और लक्षित है। यह प्रसिद्धि है कि बलराम रोहिणी के पुत्र थे किंतु यह भी ज्ञात है कि ये देवकी के पुत्र थे। पैतृक महाराज इस रहस्य को जानना चाहते थे। बलराम देवकी तथा रोहिणी दोनों ही के पुत्र किस तरह थे।
धन्यवाद प्रभु जी। ओम ज्ञान तिम्रानंदस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वप्रदान्तिकम् वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांसं श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम पिछले चार पांच दिन से हम दसवीं स्कंद में पढ़ रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। प्रभुपाद जी कहते हैं इसको सम्मम भोनम। ये पूरा जो श्रीमद् भागवतम का जो है पूरा तात्पर्य इसी में है, 10-20 में। और सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं इसको आश्रय। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं इनको इसको आश्रय। ये जो श्रीमद् भागवतम के बारे में श्रीला सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कृष्ण लीला स्थाव के अंदर वर्णन करते हैं, गुणगान गाते हुए कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है कली के जो प्रारंभ के अंदर सूर्योदय के जैसे आया है। कली द्वंतांत द्वितीय जैसे द्वापर युग खत्म होने के जैसे कलियुग आया उसके साथ सूर्योदय की तरह आया है। श्री कृष्ण परिवर्तिता क्या मतलब है कि श्री कृष्ण तो वापस अपने गोलोक वृंदावन में गए हैं, लेकिन हमारे लिए वापस कृष्ण कैसे आए हैं? श्रीमद् भागवत के रूप में। इसलिए कहते हैं श्री कृष्ण परिवर्तिता। तो अभी कलयुग में बोल सकते हैं कि कृष्ण कहाँ हैं? कृष्ण यहाँ हैं श्रीमद् भागवत के अंदर। अलग अलग अवतार अलग अलग टाइम पे आए हैं भगवान के, और इस कलयुग के अंदर ये गंदा अवतार हैं। श्रीमद् भागवतम जो है भगवान के रूप हैं। तो जैसे हम श्री श्री राधा गिरिधारी जगन्नाथ देव सुभद्रा गौर निताय जी का दर्शन करते हैं, उनका कैसे दर्शन करना चाहिए श्रीमद् भागवतम में बताया हुआ है। मैं कपिल देव ने बताया है कि कैसे दर्शन करना चाहिए। जैसे हम भगवान के सामने आते हैं तो सबसे पहले उनके चरण कमल का दर्शन करते हैं, जैसे धीरे धीरे करके ऊपर जाते हैं। ये जो मुखमंडल है उनका जो लोटस फेस वो आखिरी चीज है, धीरे धीरे करके ऊपर जाते हैं। कई बारी शास्त्रों में बताया जाता है बहुत सारे जो ऊंचे कोटि के भक्त हैं एक जगह नजर पड़ गया तो उधर से हट नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही जैसे दर्शन करते हैं श्री श्री राधा गिरिधारी का, भागवतम भी ऐसे ही पढ़ना चाहिए। ऐसे वर्णन किया हुआ है, आचार्यों ने ऐसे ही बताया है। भागवतम में भी जैसे अलग अलग अध्याय हैं, पहले दो अध्याय को कहते हैं चरण कमल लोटस फीट। ऐसे ऊपर उठते आएंगे तो दसवा जो जिसमें हम पहुंच चुके हैं अभी, जो उनका मुखमंडल जो लोटस फेस ऑफ द लॉर्ड, दसवें अध्याय को कहते हैं, जो हमारे जो संसार के अंदर प्रभु जी अभी पिछले 3-4 दिन से जब बता रहे थे कि शोक है। ये क्या है? शोक आश्रु सागरम। इसको पार करने के लिए एक ही उपाय है, जैसे इधर आके हम दर्शन करते हैं श्री श्री राधा गिरिधारी के मुखमंडल में देखेंगे उनका जो ब्यूटीफुल स्माइल, मुस्कुराहट देखते ही हमारा सब शोक दूर हो जाता है। वैसे ही ये जो श्रीमद् भागवतम धीरे धीरे हम लोग पढ़ते हुए हमारा सब शोक सागर हमको पार कर सकते हैं। ये आचार्यों ने कंपेयर किया हुआ है कि क्योंकि डीटी फॉर्म हो या जो ग्रंथ रूप में है, भगवान है। व्यासदेव को आचार्य लोगों ने तुलना किया है मधुमक्खी के लिए। शिला व्यासदेव क्या है? ये जो अलग अलग उन्होंने जो ग्रंथ स्क्रिप्चर्स दिए हैं उसमें से मधुमक्खी की तरह जाके, जैसे वो स्क्रिप्चर्स को कहें कि फूल, जाके उनमें से सब जो मधु निकाल के अपना बी हाइव को क्या करते हैं, तो लाके एक जगह जैसे मधुमक्खी का जाल होता है ना, उसमें लाके मधु जो है मधुमक्खी जाके सब जगह से मधु लेके आके एक जगह इकट्ठा करता है ना अंदर, वैसे ही व्यासदेव जी ने क्या कहा, अलग अलग पुराणों से हाँ वेदों से सब जगह से निकाल के जो पूरा जो मधु है लाके इस भागवतम में श्रीमद् भागवतम में दिया है। तो ये है शिला व्यासदेव जी का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कह सकते हैं इसको। और इसको कई लोग ये भी कहते हैं कि जैसे आइसक्रीम जो है सब लोगों को पसंद हुआ है ना, आइसक्रीम तो खाते हैं लोग पसंद है, जो डिवोटी वाला जो शॉप वाला आइसक्रीम जो है, लेकिन उसको और प्रमोट करने के लिए क्या करते हैं वहां पर, अगर कभी देखा होगा कई बार टीवी में भी ऐड आता है या अदर इतने सारे बिलबोर्ड से पोस्टर से उसमें देख सकते हैं, आइसक्रीम के ऊपर एक हनी का लेयर होता है ना, वो भी डायरेक्टली ऐसा नहीं गिरता, एक लेयर एक एक करके ऐसे ऐसे करके फोल्ड करके गिरता है ना, वो देखते हैं। अगर जो सामने उसके खड़े होते हैं या टीवी के अंदर भी ऐड देखते हैं ऐसा कोई चीज जो ऐसा जो हनी ऐसे गिरता है एक फोल्ड के ऊपर, दो बार देखता तीन बार देखता उसके बाद कहते हैं अच्छा इसको तो खाना चाहिए। तो ऐसे ही शिला व्यासदेव का जो है तो पूरा वहां पर जो वेदों का सार जो है उनमें से जो मधु निकाल के श्रीमद् भागवतम में दिया है, ये है भागवतम का। दूसरा जो पूरा जो अलग अलग अध्याय है इसको भी आचार्य ने यह तुलना किया है कि जैसे बिजनेसमैन और क्लाइंट के बीच में कैसे रिश्ता होता है। शुरू में जब कोई बिजनेस के लिए जाते हैं कोई क्लाइंट जाते हैं तो कोई रिश्ता नहीं होता है, आगे कुछ पूछ नहीं सकते हैं, कुछ दिन के बाद वो क्लाइंट और बिजनेसमैन के बीच में रिश्ता बन जाता है, ये पता करते हैं अच्छा आप कहाँ रहते हैं, आपके कितने बच्चे हैं, आप क्या करते हैं, आप क्या खाते हैं, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो रिश्ता बन जाता है। तो ऐसे ही ये जो शुरू के जो 9 कैंटोस जो 9 अध्याय जो हैं वो साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 10वें अध्याय पहुंचने से पहले ये जो रिलेशनशिप से पहले तो वो 9 पढ़ना बहुत जरूरी है, ये समझाते हैं शास्त्रों में। और श्रीमद् भागवतम जो है इससे ऊपर इज द ग्रेटेस्ट बेनेडिक्शन फॉर द ह्यूमन सोसाइटी, इससे ऊपर कोई और बेनेडिक्शन नहीं है। तो आज हम जो महान वैष्णव के बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे, एक तो महाराज परीक्षित, दूसरा वैष्णव है मध्वाचार्य। तो महाराज परीक्षित हम जानते हैं, उनके वजह से ये श्रीमद् भागवतम हमें मिला है। तो महाराज परीक्षित ये जो आप 10वें कंध में शुरू में देखेंगे ये पहले 7 श्लोक जो हैं महाराज परीक्षित के गुणगान के बारे में बताते हैं। अभी 8वें श्लोक से तो प्रश्न शुरू होता है उनका, असली में पहले 7 श्लोकों में हमें समझ सकते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम को सुनने में समझने का क्या क्वालिफिकेशन है, क्या योग्यता है, थैंक यू, होना चाहिए। हाँ ये महाराज परीक्षित के लाइफ के द्वारा ये सुन सकते हैं हम लोग इधर। सबसे पहले महाराज परीक्षित ने क्या रास्ता दिखाया, राइट अप्रोच, तरीका। पहले श्लोक के अंदर एकदम से बताते हैं कि तरीका क्या है, कोई भी ये जो भागवतम सीखने के लिए पढ़ने के लिए सुनने के लिए क्या राइट तरीका है। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो फिर केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं अगर हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है दोनों मिलने से वाटर बन जाता है, ये तो राइट तरीका है, और कुछ और मिलने से पानी तो नहीं बनता है ना, ये तो सिंपल एग्जांपल है चीज। तो सेम चीज है तो शिला प्रभुपाद भी कहते हैं, सब आचार्य लोग कहते हैं और महाराज परीक्षित भी कह रहे हैं। सबसे पहले श्लोक में किन के बारे में बात करते हैं, वंशों के बारे में बात करते हैं, राजाओं के बारे में बात करते हैं, श्रील प्रभुपाद भी कहते हैं डिवोटी फर्स्ट डीटी नेक्स्ट, भक्त पहला उसके बाद भगवान के बाद, ठीक है। ये साफ साफ ये अप्रोच साफ साफ बताते हैं कि पहले भक्त उसके बाद भगवान। ये जो वन कैन नेवर लिसन टू श्रीमद् भागवतम अनलेस ही इज विलिंग टू लिसन टू द ग्लोरीज ऑफ द डिवोटी। क्या मतलब है, तब तक श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके उनका उसका रुचि नहीं ले सकते हैं तब तक वो भक्त दूसरे भक्तों के गुणगान सुन के प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। ये सबसे ये राइट अप्रोच है। श्रीमद् भागवतम के जो दसवें खंड के अंदर शुरू में तो महाराज परीक्षित यही बताते हैं, खतितो वंश विस्तार भविता सोम सूर्य राजान, ये बताते हैं पूरा। और ये क्यों बताते हैं ऐसा, हम लोग भगवान के पास कृष्ण के पास क्यों पहले पहुंचना चाहते हैं, कभी सोचा हम लोगों ने? बहुत आसान है, भगवान को डील करना बहुत आसान है, भक्त से डील करना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए हम कितने बार हम लोग गलती कर रहे हैं, भगवान के सामने आते हैं खड़े होते हैं, श्री गिरिधारी जी हमने ये गलती किया है हमें माफ कर दीजिए, हमने कर लिया हमारे भगवान के रिश्ते हो गया, ठीक है भगवान ने माफ भी कर दिया हो गया। और हम लोगों में से कितने लोग दूसरे भक्त से ये बोल सकते हैं कि हमने किया है वो किया है? नहीं, हमारे अंदर वो एंग्जाइटी रहता है, अरे ये किसी और को बताएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो भगवान भी खुद कहते हैं कि सबसे पहले भक्तों के वो है, ठीक है। श्रील प्रभुपाद ये कहते हैं डीटी इज लास्ट डिवोटी फर्स्ट, तो ये रिलेशनशिप सबसे मेन चीज है। तो अब श्रील प्रभुपाद के जो मायापुर के अंदर जब मंदिर से पहले सबसे पहले क्या बनाता, लोटस बिल्डिंग बनाता है, किस लिए? भक्तों के सुविधा के लिए। एक भक्त ने पूछा भी था कि प्रभुपाद राधा माधव के लिए कुछ नहीं बना अभी तक, इनका लोटस बिल्डिंग बन गया। तो प्रभुपाद ने कहा डिवोटी फर्स्ट डीटी नेक्स्ट, ठीक है। अरे राधा माधव जी खुद जैसे भक्त लोग यहां रहेंगे वो प्रसन्न होंगे उनका सबका सुविधा अच्छा रहेगा, तो फिर जो भगवान खुद आ जाएंगे इधर और उनका जो अपना अरेंजमेंट खुद कर लेते हैं वो जी, ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने ये कहा है। तो आजकल जैसे मुंबई में देखेंगे तो फिर हमारा सामने एग्जाम्पल है हरे कृष्ण लैंड जुहू मंदिर के अंदर कितने तकलीफ में थे उस समय, हाँ भक्तों को सुविधा नहीं था। तो श्रील प्रभुपाद जी ने सबसे पहले भक्तों के लिए देखा है। उस समय विस्तार संक्षेप में यह था कि एक भक्त पीएल शेट्टी करके भक्त थे, भक्तों को वहां पर पानी भी नहीं मिलता था, उस समय पानी भी नहीं देते थे लोग, तो ये खुद राइफल लेके घूमते थे दिखाने के लिए कौन भक्तों को पानी नहीं देता है करके। तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद के लिए अच्छा रूम बनवाया, हाँ पीएल शेट्टी के भक्त हैं, और पूरा कंस्ट्रक्शन में मदद किया है। तो श्रील प्रभुपाद उनसे बहुत प्रसन्न हुए। श्रील प्रभुपाद प्रसन्न होने के बाद बता क्या कहा उनको, एक दिन बुला के बोला है कि मैं आपके लिए गोलोक वृंदावन में एक रूम रिजर्व करूंगा। तो भक्त देखिए भक्त क्या बोलते हैं उस समय, प्रभुपाद मैं उस लायक नहीं हूं। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं उस समय, ये तुम्हारा हेडेक नहीं है, इट इज माय हेडेक, आपके लिए वो करना मेरा। ये है भक्त का जो है दोनों भक्तों के बीच में रिश्ता देखिए कैसा है। तो प्रभुपाद जी गारंटी देते हैं कि गोलोक में हमारे लिए एक रूम बना है, रूम है ये है। अभी भी वैसे उदाहरण और भी हैं, हमारे मीरा रोड में देखिए सबसे पहले हमने देखा जितना जानते हैं ब्रह्मचारी आश्रम और वो सब सबसे पहले पूरा है, और मंदिर अभी बन रहा है, ठीक है। जैसे भक्त लोग खुश रहेंगे मंदिर अपने आप बन जाएगा, पूरा। और एक चक्र जहां पर नित्यानंद धाम है वहां पर क्या है देखेंगे, बहुत अच्छा गेस्ट हाउस बना हुआ है, मंदिर अभी भी बन रहा है, ठीक है। तो ये पूरा उदाहरण देखेंगे कि क्या है राइट अप्रोच, क्या है डिवोटी फर्स्ट डीटी नेक्स्ट, ये तरीका है। महाराज परीक्षित भी यही बता रहे हैं हमें, हमारा लाइफलाइन क्या है, लाइफलाइन जिससे लाइफ सिस्टम क्या है, लाइफलाइन सिस्टम जिससे हम लोग भक्त लोग जैसे रह सकते हैं, जिसके बिना रह नहीं सकते हैं, क्या है होली नेम, है ना। इवन होली नेम जो है भक्त के बिना नहीं होता है, ठीक है। मान लीजिए हम एक कहीं कोने में चुपके बैठ के जपा कर सकते हैं कि नहीं, हम अपने आप को धोखा देंगे ऐसे करेंगे तो। चैतन्य महाप्रभु जी ने वो नहीं बताया, चैतन्य महाप्रभु जी ने संकीर्तन के लिए कहा है कि जपा भी भक्तों के संग में बैठ के करना है, कीर्तन भी भक्तों के संग में बैठ के करना है। जब बैठ के करते हैं तो वो जो इफेक्ट जो है तो मल्टीप्लाई होता है, जितने लोग भक्त लोग होते हैं साथ में, जब साथ में जपा करते हैं उतने बार सुनते हैं, अलग बैठ के सुनेंगे तो फिर अकेले सुनते हैं तो उतना इफेक्ट रहता है। सॉरी क्षमा करने, सो व्हेन डिवोटीज आर प्लेस्ड कृष्णा विल बी, कृष्णा विल रिवील टू अस, वो तरीका वो है। क्योंकि भगवान जो है जब तक अपना जो जो हृदय शुद्ध नहीं होता है तो रिवील नहीं करेंगे, वो कैसे, जब गुरु साधु जो उनका जो आश्रय लेके हमारा हृदय साफ होगा तभी भगवान हमें पता कर सकते हैं। जो अनिरुद्ध प्रभु जो हिज ग्रेस अनिरुद्ध प्रभु जो अभी इस समय हमारे पास साथ में नहीं है फिजिकल में, बट उनका जो गुणगान और उनके जो एग्जाम्पल से हमें पता है, वो बताते थे कि ये जो अकेले बैठ के जपा करना जो है वो एक गोली के बराबर है, जैसे गोली लेते हैं ना बीमार हो तो गोली के बराबर है। और जो सब मिलके जब करते हैं बैठ के जपा करना संकीर्तन करना, वो इंट्रावीनस मेडिकेशन है, इंजेक्शन देते हैं ना, इंजेक्शन देने से उसका इफेक्ट फास्ट आता है, तो वो बताते हैं। तो आचार्य उनसे हम लोग सीख सकते हैं वो भी कि डिवोटी फर्स्ट एंड डीटी नेक्स्ट। और श्रीमद् भागवतम में क्या है, श्रीमद् भागवतम में खुद ये डिवोटीज का सबसे पहले गुणगान हुआ है, पहले 9 स्कंदों में और उसके बाद। अभी मैं सोचता था कि इधर लास्ट कुछ महीनों में 9th कैंटो अध्याय के बारे में वर्णन होता था, यहाँ के हर बार अगर देखेंगे तो फिर डायनेस्टी, ये राजा के पुत्र, ये राजा, ये राजा के पुत्र, ये राजा, इतने पुत्र हुए, ऐसे 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 चलता रहा, गोइंग ऑन। मैं समझता था ये कैसा है ये, ये जो महाराज परीक्षित जो है 7 दिन उनके पास कम समय है और वो कृष्ण के बारे में और उनके बारे में सुनने आए हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी जो हैं तो ये इनका राजाओं के बारे में हम ले जा रहे हैं उनके चरित्र के बारे में थोड़े थोड़े संक्षेप में बताते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। लेकिन क्या जरूरी है, परीक्षित महाराज बताते हैं ना कि उनका जो चरित्र वो सब सुनने से अपना हृदय जो है साफ होता है, दिस इज अ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। हाँ, सुखदेव गोस्वामी ऐसे ही नहीं बता रहे थे और महाराज परीक्षित ऐसे नहीं सुन रहे थे, उनका कोई कारण था, ये प्यूरिफिकेशन। वो प्यूरिफिकेशन के बाद ही 10th कैंटो में बढ़ सकते हैं हम लोग, उसके बाद ही हम लोग 10th कैंटो के अंदर आने का क्वालिफिकेशन मिलता है, ये है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में 18 साल थे तो उन्होंने क्या दिखाया है, रोज टोटो गोपीनाथ मंदिर में जाते थे, फिर क्या करते थे वहां पर, गदाधर पंडित से श्रीमद् भागवतम सुनते थे, वहां पर क्या सुनते थे, ध्रुव महाराज के चरित्र वर्णन बार बार उनको ही कहते थे कि और सुनाओ, श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं, राधा कृष्ण खुद हैं, वो सुनना चाहते हैं भक्तों के बारे में। हम भक्त लोग सुनना चाहते हैं कृष्ण और राधा कृष्ण के बारे में। तो ये है, परीक्षित महाराज हमें राइट तरीका सिखा रहे हैं कि कैसे श्रीमद् भागवतम और भगवान के अप्रोच कैसे करना चाहिए। ये भक्त पहले, भगवान बाद में। तो भक्तों के गुणगान सुनने से ही भगवान के बारे में समझ सकते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु ने खुद बताया है ये चीज। अब हम भूल जाते हैं, खाली हम शास्त्र के अंदर ही रहते हैं। आप देखिए शिला प्रभुपाद, हाँ, शिला प्रभुपाद के उनके जो फॉलोअर्स, आप सोच सकते हैं कि रशिया में और चाइना में कितने मुश्किल से उन लोगों ने ये सब प्रचार किया, वो सब किया। जितना मुश्किलें रशिया में भक्त लोगों ने देखा है, और कहीं नहीं है। अब भक्त लोग जो रशिया में, आप सोच सकते हैं कि कोई जो जपा का टेस्ट उनको इतना ज्यादा था कि बीट नहीं था, कुछ नहीं था, तो फिर ब्रेड जो टुकड़े उसको लेके उन लोगों ने बीट बना के जपा किया। उनको रोज मारपीट पड़ता था, फिर भी जपा नहीं छोड़ा है। ठीक है, उन सब के बारे में सुनने से हमारा हृदय साफ होता है। हम सोच सकते हैं हम कितने सौभाग्य हैं, हमें तो खाली इधर प्लेट में रख के, हमें मुंह के अंदर भी रख दिया है, हम खाने की बस, खाली हमें खाना है। शिला प्रभुपाद ने इतना काम किया भाई, उनका उनका जो फॉलोअर्स ने सब काम किया है। चाइना में देखिए, चाइना में तो फिर मोबाइल मंदिर है, एक जगह नहीं है, एक दिन एक जगह, दूसरे दिन दूसरी जगह, नहीं तो उनको जेल में डाल देंगे पकड़ के। तो उनको उतने मुश्किलों में भी वो साधना कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो उनके बारे में सुनने से हमारा जो है हृदय साफ होता है, उसके बाद ही हम लोगों को ये जो 10वें स्कंध जो है सुनने का जो क्वालिफिकेशन मिलेगा हमें। ये परीक्षित महाराज के जो शुरू शुरू में फर्स्ट क्वालिफिकेशन है, बताते हैं। और दूसरा क्वालिफिकेशन क्या है परीक्षित महाराज दूसरे जो श्लोका के अंदर बताते हैं, क्या चीज है? नॉन जजमेंटल, हिंदी में नॉन जजमेंटल का जो समदृष्टि, हाँ, उदाहरण से बताएंगे नॉन जजमेंटल का क्या है। जैसे लेबल कर देते हैं, अगर कोई देखते हैं कि ये अच्छा भक्त है, ये बुरा भक्त है, ये तो बहुत ही गलत भक्त है, गंदा भक्त है, वो होता है ना गुड बैड अगली, एक मूवी भी था गुड बैड अगली करके, ये अच्छा भक्त कर देते हैं हमारे नजर से जो दिख रहा है उससे, ये अच्छा बना देते हैं, किसी को बुरा बना देते हैं, किसी को तो बहुत ही बुरा बना देते हैं, किसी को तो बहुत ही अच्छा कर देते हैं। ठीक है, ये सब जजमेंटल है। जैसे हम लोग कुछ शास्त्र पढ़ लेते हैं, थोड़ा जैसे थोड़ा ज्ञान होता है, तो फिर हम जाके दूसरे के ऊपर जाके अप्लाई करने लग जाते हैं, लेकिन ये सब शास्त्र जो भी है सब मेरे लिए है। तो दूसरा जो महाराज परीक्षित दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं, यदोश्च धर्मशीलस्य, यदु महाराज को क्या संबोधित करते हैं, धर्मशीलस्य। अगर हमने 9th कैंटो में पढ़ा था, यदु महाराज धर्मशीलस्य कैसे हो गए, तो ययाति राजा जो उनके पिताजी थे, तो उन्होंने क्या मांगा उनसे, उनके उनके जो जो यवन जो इनका यूथ मांगा कि मुझे दे दो, मुझे बहुत इंद्रिय का जो आकांक्षा है उनको तृप्ति करना है, मुझे दे दो। यदु महाराज ने क्या कहा, नहीं। तो वो धर्मशील कैसे हो गए, रामचंद्र अगर सुन लेते हैं तो हाँ वो धर्मशील हैं, तो हाँ मानते हैं, बिना उनका जो पिताश्री जो दशरथ महाराज बिना कहे वो चले गए वन में चले गए। ठीक है, वो तो 100% मान लेंगे हाँ धर्मशील। लेकिन यदु महाराज कैसे कैसे मान सकते हैं, मान सकते हैं कि पुरु जो आखिरी जो उनके बेटे थे वो धर्मशील हो सकते हैं, लेकिन यदु महाराज कैसे? तो जैसे हम लोग सुनेंगे, अगर आगे कंटेम्पलेट नहीं करते हैं, सोचते नहीं हैं, तो फिर ये विचार होगा, तो परीक्षित महाराज गलत तो नहीं है, उन्होंने कैसे कहा धर्मशील, वो उन्होंने इसलिए कहा कि दो कारण है उनके लिए। पहला कारण ये है कि यदु महाराज जानते थे कि उनके पिताश्री का पुत्र का क्या मेन काम है कि पिता का उद्धार करना। तो वो जानते हैं कि पिता का क्या स्टेटस है। वो इंद्रियों में इतने डूबे हुए थे तृप्ति के अंदर, तो अगर ये दे देते यवन तो और नीचे गिर जाते। लेकिन उनका पुत्र का काम है कि पिता को ऊपर उठाना, तो इसलिए ये कारण है वो नहीं देते। दूसरा कारण, वो जानते थे कि उनके वंश में भगवान कृष्ण आने वाले हैं। जब भगवान आने वाले हैं तो फिर उनको कोई बीच में कोई अपने तरीके से कुछ नहीं करना था, उनको ब्रेक नहीं लेना था। अगर वो मान ले दे दिया कि कुछ दिन के बाद पिताजी वापस कर देंगे इनको, जरूरी थोड़ी है कि मिल जाएगा। अब हम रामायण में भी देखते हैं, श्री महाराज जैसे उनको भगवान राम राज दिलवा देते हैं तो फिर वो उसी के राग जो भोग के अंदर रह जाते हैं, भूल जाते हैं कि उनका क्या प्रॉमिस था कि महारानी सीता को ढूंढ कर निकालने का। तो इनका ये भय था कि ये भी हो सकता है, भगवान कृष्ण आने वाले हैं तो मेरे को ये नहीं कहना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि अगर अंदर से देखा जाए तो धर्मशील है। इसके कई उदाहरण भी हैं। तो एक बारी एक मास्टर जो टीचर है, बच्चे को मैथमेटिक्स टीचर पढ़ाते थे, तो बच्चे को बताया कि दो आपके मैं आपको दो आम और दो आम देता हूँ, कितने आम हैं? तो बच्चे ने बोला कि पांच आम हैं। और मास्टर ने दोबारा पूछा कि दो आम और दो आम कितने हैं? पांच। तो मास्टर को पता था कि ये जो आम शायद पसंद नहीं है, इसका पसंद कुछ और फल है। बोला कोई ना स्ट्रॉबेरी बोलते हैं। तो बोला कि दो स्ट्रॉबेरी कितना है? बोला कि चार स्ट्रॉबेरी है। बहुत खुश हुआ मास्टर, बोला कि अगर मैं दो स्ट्रॉबेरी तुम्हें देता हूँ, दो स्ट्रॉबेरी देता हूँ, तुम्हारे पास कितने हैं? बोला कि चार स्ट्रॉबेरी। बहुत खुश। फिर वापस आम पे आ गए। मैं अगर तुम्हें दो आम देता हूँ और दो आम देता हूँ कि कितने हैं तुम्हारे पास? फिर स्टूडेंट बोलता है पांच। तो मास्टर बहुत दुखी हो गया और गुस्सा भी हो गया। तो बोलते कि नालायक ऐसे क्यों, अभी ठीक ठाक इसके लिए बताता है और इसमें नहीं बता रहे, ऐसा क्यों? तो बच्चा जवाब देता है कि मेरे पास माँ ने एक पहले से आम मेरे बैग में है, ठीक है, तो इसलिए मेरे पास पांच आम। तो टेक्निकली देखा जाए मास्टर द टीचर इज राइट कि 2+2=4 बोलना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो बच्चा इज राइट, स्टूडेंट इज राइट, बट टीचर डजंट नो दैट ही हैज अनदर थिंग। तो हम लोग जो जजमेंटल होते हैं ना कि ये दूसरे डिवोटी अच्छा नहीं है, बुरा नहीं है, ये हरेक हम लोगों के पास जो ना ये छुपा हुआ जो आम है हरे हम लोगों के पास है, ठीक है, उसके वजह से उसको देख के बिना हम लोग जज करने लग जाते हैं कि बाहर से ही, हाँ ये गलत है, ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है। कृष्ण वो नहीं देखते हैं, कृष्ण खाली अच्छाई देखते हैं उसके अंदर। तो हम लोग ये जजमेंटल हो जाते हैं कि ये गलत है, ये सही है, ये अच्छा भक्त है, बुरा भक्त है। इससे क्या होता है? इससे सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम इसी से है, अपराध। आचार्य लोग बताते हैं वैष्णव अपराध होता है, जैसे वैष्णव अपराध होता है जो भगवान जो है हमसे बहुत बहुत दूर, और ये जो श्रीमद् भागवतम और भगवान की कथा पे रुचि खत्म हो जाता है हम लोगों को। तो ये हमें सबसे पहले जरूरी है कि आपस में भक्त लोगों से हम लोग कैसे व्यवहार करना है, ये हमें सोचना है कि हमारे नजरों में कुछ गलत नजर आता है वो करेक्ट नहीं है हमेशा। हो सकता है वो जो कुछ आम छुपा हुआ कुछ चीज है उधर, उसका वजह से हो रहा हो। इस होलीनेस देवामृत महाराज स्वामी महाराज बताते हैं अपने जो भक्ति भाव के किताब के अंदर तीन चीज उनका रियलाइजेशन है। सबसे पहला प्यूरिटी ऑफ द हार्ट, दूसरा चीज बताते हैं प्यूरिटी ऑफ द लाइफस्टाइल, तीसरा है प्यूरिटी ऑफ द इंटेंशन। प्योरिटी ऑफ द हार्ट पे तो हम लोगों को ज्यादा कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब अगर जैसे कुछ सोचते हैं उसमें हमें हमारे दिल में बुरा या कुछ लगने लगता है, कोई गलत देखते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होता है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन ये जो अपना लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल का क्या मतलब, जैसे कुछ सोचा है लेकिन हमने उस पर अमल नहीं किया है तो वो तो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। और तीसरा इंटेंशन, हमारा उद्देश्य क्या है कोई चीज करने में, वो भी हमारे कंट्रोल में है। तो आचार्य लोग बताते हैं कृष्ण भगवान जो है किस कैसे फीस्ट पे रहते हैं, ही लिव्स ऑन द फीस्ट ऑफ इंटेंशन, फीस्ट ऑफ इंटेंशन, प्यूरिटी ऑफ इंटेंशन इसलिए बहुत जरूरी है। बाकी तीन जो महाराज परीक्षित के गुण आगे के श्लोक में बताए सात तक, कि रुचि किस पे रुचि, कृष्ण कथा पे रुचि जो है उनका, और कि जो आतुरता जो ईगरनेस टू हियर कृष्ण कथा, और फिफ्थ क्या चीज है आखिरी चीज बताते हैं सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, भगवान कृष्ण ने उनको बचाया है उसके वजह से, उन्होंने ही हैज गिवन एवरीथिंग, अगर वो नहीं बचाते उनके माँ के जो वूम के अंदर क्या होता उनके साथ। तो ये पांच चीज जो है ये शुरू के जो सात श्लोक में महाराज परीक्षित का गुण है। आज हम टाइम 9 o'clock हो रहा है, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आज मध्वाचार्य का थिरुभाव तिथि है। कहते हैं आविर्भाव से थिरुभाव तिथि महत्वपूर्ण है, हालांकि बराबर है दोनों। थिरुभाव में क्या है कि ऑलरेडी आचार्य लोग आके निकल रहे हैं, इसका मतलब ऑलरेडी उन लोगों ने जो जो किया है उसके बारे में हम गुणगान कर सकते हैं, इसलिए आचार्य लोग कभी कभी कहते हैं थिरुभाव तिथि जो है आविर्भाव से इंपॉर्टेंट है। माधवाचार्य जो हैं जो वायु के अंश हैं, जो वायुदेव के जो अंश हैं, इससे पहले हम जानते हैं हनुमान थे और भीम, और इसके बाद कलयुग के अंदर वायुदेव जो मध्वाचार्य के रूप में आए हैं हमारे लिए। वो किस लिए आए थे, उस समय ये जो मायावाद प्रचार बहुत ज्यादा था उसको खंडन करने के लिए आए हैं, और विग्रह सेवा के लिए आए हैं, ये दो मेन चीज था उनका। उनका जन्म हुआ है उडुपी के पास पादक क्षेत्र, उनका माता पिता थे माधव गेह और वेदवती। तो उनके जो पिताजी अनंतेश्वर मंदिर के पास जाके अनंतेश्वर से 12 साल प्रार्थना किया है, खाली दूध पीते थे, तो उसके बाद मध्वाचार्य उनके पास पुत्र के रूप में आए हैं। जब ये मायावाद प्रचार बहुत ज्यादा हो गया था तब सब देवता लोग नारायण के पास गए हैं, भगवान नारायण से प्रार्थना किया, तब वैकुंठ में भगवान नारायण ने जो वैकुंठ वायु को बुला के बोला है कि आप पृथ्वी लोक में जाके ये वापस स्थापना कीजिएगा। तो माध्वाचार्य का इधर अपीयर होने का ये उद्देश्य था, ऐसे कई उन्होंने छोटे बच्चे के टाइम पे ही बहुत ऐसे एक्टिविटीज की हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि वो साधारण नहीं थे। वो तो उनका जठराग्नि इतना ज्यादा था, हर घंटे में रोते थे, दूध पीने के बाद छोटे बच्चे के टाइम पे उनको भूख लग जाता था, फिर उतना तेज इतना जठराग्नि था। कई बार ही, एक बार यह भी वर्णन आता है, उनको 200 जो प्लांटेंस केले दिए थे तो वो सब खा के डाइजेस्ट कर लिए थे। तो ऐसे दो तीन वर्णन आता है इसके अंदर। तो वो वायु के अंश हैं। और जो अक्षर अभ्यास हुआ है उनका, और जो कई उनका जो शुरू से ही उनको पूरा ज्ञान था, जब उनको माँ के गोद में जब थे, जब एक बारी अक्षर अभ्यास के बाद और एक प्रवचन होता था, पुराणिक प्रवचन था, तो उसके अंदर जो थे एक जगह गलत होता था तो थोड़ी देर चुप थे, उसके बाद उठ के वो जो बदनीय फैमिली के जो परिवार के जो लोग पुराणिक प्रवचन करते थे उनको विरोध किया और समझाया कि गलत है। तो सब लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए इनसे कि इतने छोटे बालक ये सब कैसे जानते हैं। सब पूछा उनसे कि कैसे जानते हैं आप, तो उन्होंने बोला कि ये सब तो पिछले जन्म का वो है, मैं पहले से जानता हूँ इस पर से। तो उनका जो शुरू से जो वाद विवाद के अंदर, और जो अगर गलत होता तो फिर सीधा पकड़ते थे। एक बार उनके खुद जो पिता जो एक वर्णन करते हुए तो एक चीज को छोड़ दिया था, तो वो पिताजी को भी नहीं छोड़ा, पिताजी को भी पॉइंट किया है कि हाँ ये नहीं बताया करके। ऐसे मध्वाचार्य जो है शुरू से ही ये जो दुनिया, उनको पता था कि किस लिए आए हैं, उनको क्या करना है, तो वो इस दुनिया से काफी विरक्त थे। तो अच्युत प्रेक्षक जो उस समय उनके पास गए हैं कि उनसे पूछा कि हमें दीक्षा दीजिए, तो अच्युत प्रेक्षक ने जानते थे कि उनके गुरु के द्वारा मध्वाचार्य आएंगे और ये जो मायावाद खंडन करके द्वैत फिलॉसफी को वापस लेके आएंगे करके। तो अच्युत प्रेक्षक बहुत खुश थे, लेकिन उनके माता पिता जो हैं बहुत दुखी हुए। तो माता पिता वापस आके उनसे विनती किया कि हमें हमारा बच्चा वापस दे दो। तो उस समय मध्वाचार्य ने एक शर्त रखा है, जैसे आपका दूसरा पुत्र हो जाएगा तो मुझे वापस जाना है। तो जैसे दूसरा पुत्र हो गया उनका, तो वापस मध्वाचार्य अच्युत प्रेक्षक पास पहुंच गए और 12 साल के अंदर ही उनका संन्यास दीक्षा हो गया उनका। उन्होंने गीता भाष्य, गीता जो भगवत गीता पे कमेंट्री भी दिया है, और बद्री गए हैं शिला व्यासदेव से मिलने। हमें ये समझना है कि ये शिला व्यासदेव, इस समय के जो शिला व्यासदेव हैं, ये कोई अंश नहीं है, शक्तावेश अवतार नहीं है, ये खुद भगवान हैं। और ये जो मध्वाचार्य हैं ये मुख्य प्राण हैं। तो जैसे उस समय हनुमान भगवान रामचंद्र को सेवा करने के लिए आए थे, और भीम जो कृष्ण का सेवा करने के लिए आए थे, वैसे ही मध्वाचार्य जो हैं वेद व्यास जी का सेवा करने के लिए आए हैं इधर। ये है मेन रीजन जो है। उनका मेन फिलॉसफी के अंदर अगर खा जाए तो एक चीज कह सकते हैं, उन्होंने ये कहा कि हरि सर्वोत्तम वायु जीवोत्तम, तो ये है उनका मेन चीज। उस समय सब ये प्रचार था कि सब भगवान है, आप भगवान है, मैं भगवान हूँ। मध्वाचार्य ने अलग अलग किया है, भगवान अलग है, जीव अलग है। तो हरे कृष्णा, मैं यहाँ पर रुकता हूँ। किसी का कोई कमेंट है, प्रश्न हो तो बताइए। हरे कृष्णा। That approach. No, approach is it's only the true devotee. So, one is the right approach. One is second being the non-judgmental. Third is the taste for the Krishna Katha. Five qualifications of Maharaj Parikshit. Third is the taste for Krishna Katha. No, that is in the His Holiness Devamrita Maharaj's realization in Bhakti Bhava. Those three are purity of the heart, purification of the heart, and purity of the lifestyle, and purity of the intention. So we have control. हम लोगों के हाथ में तो फिर intentions और lifestyle के control है. Heart के अंदर we cannot. We feel bad. अगर कोई गलत हो रहा है तो we feel bad. बट उस पर वी वॉन्ट एक्ट, जस्ट होल्ड, देखो कि ऊपर से क्या हो रहा है, वाई इट इज हैपनिंग। थोड़ा जैसे वंस वी वेट एंड सी, अंदर जो हमारे अंदर परमात्मा जो है, बताते हैं आचार्य लोग, दे विल रिवील द ट्रूथ, दे विल मेक यू सी वॉट इज राइट वॉट इज रॉन्ग। जो नहीं तो इमीडिएटली इफ यू स्टार्ट एक्टिंग देन दिस विल बी रॉन्ग। इसमें एक स्मॉल एग्जाम्पल भी है, एक असलियत है। एक बारी एक भक्त जो है किसी और दूसरे भक्त को दूसरे जगह पे यात्रा के लिए गए हैं और बस में ट्रैवल कर रहे थे। दूसरे भक्त सर्दी के टाइम पे शाल ओढ़ के जा रहे थे। ये भक्त ने देखा दूसरे भक्त जो है लेफ्ट हैंड से चैंटिंग कर रहे हैं, तो थोड़ी देर देखा उन्होंने, फिर उनको कहा कि प्रभु जी आप कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर कितने साल से हैं? तो बोला कि 18 साल से। अच्छा, तो थोड़ी देर फिर देखा उनके उनसे रहा नहीं गया, बोला कि प्रभु जी ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि आपको बताना, लेकिन आपको पता है ना कि लेफ्ट हैंड से नहीं करना होता है। मुझे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको पता है ना लेफ्ट हैंड से नहीं करना चाहिए जपा। तो दूसरे भक्त ने कहा कि हाँ प्रभु जी मैं राइट हैंड से करूंगा, थैंक यू करके बोला। फिर दोनों भक्त लोग सो गए। फिर थोड़ी देर बस जाने के बाद ये दूसरा जो भक्त उनके ऊपर बोला है कि लेफ्ट हैंड से नहीं करना चाहिए, तो उनका शाल उठ गया था, अपने देखा है कि राइट हैंड है ही नहीं उनका दूसरे भक्त के पास। ठीक है, तो ये हम लोगों का ये रहता है। तो वापस आके ये भक्त जो है बहुत रोए कि ये कृष्ण भक्त लोगों ने सिखाया हमको। देखिए कि क्यों हमें नजर में आता है, अगर वो थोड़ी देर रुक जाते तो उनको पता रहता है कि क्या है, राइट से क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनसे नहीं रहा गया कि उन्होंने सीखा है कि राइट से करना है, तो वो रहा नहीं गया, उनको बोल दिया, तो बाद में पछता है। ठीक है, यही होता है। तो विल जस्ट वेट, लेट कृष्णा रिवील टू अस। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, शिला प्रभुपाद की, समावेत भक्तवृंद की।